نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، الله تعالى شأنه كي سب سے افضل نبی ہمارے آقا اور مولا سرکار دو عالم شمس الضحا بدر الدجا امام المتقین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی وہ دبی رہتی ہے، ایک باپ ہے اس کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہے لیکن بیٹا ایک نافرمانی کرتا ہے، دوسری نافرمانی کرتا ہے، تیسری نافرمانی کرتا ہے، چوتھی نافرمانی کرتا ہے، اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ باپ کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرے دل میں اب اپنے بیٹے کے لیے محبت نہیں، بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، بیٹا بات چیت کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا، کبھی کبھی ماں باپ اپنے بچوں کی تنبیہ کے لیے ایسا کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی حقیقت میں دلچسپی نہیں ہوتی، اور باپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی اور بھی اس کا ذکر کرتا ہے تو غصے کا اظہار کرتا ہے، وہ میرے لیے مر چکا ہے، لیکن اسے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کی خبر آتی ہے تو وہی باپ جو اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ میرے دل میں اپنے بیٹے کے لیے محبت نہیں تھی، وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل میں تو بیٹے کے لیے بہت جگہ ہے، تو کبھی کبھی محبت دبی رہتی ہے، محسوس نہیں ہوتا کبھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضرور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اعلی درجے کی نہ ہو. لا یومن احدکم, تم میں سے کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے, اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں متائے عالم سے زیادہ پیارے ہیں, اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ پیارے ہیں. محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا. پدر باپ سے بھی زیادہ پیارے, مادر ماں سے بھی زیادہ پیارے, برادر بھائی سے بھی زیادہ پیارے, مال سے بھی زیادہ پیارے, جان سے بھی زیادہ پیارے, اولاد سے بھی زیادہ پیارے. ایک مومن کا دل یہی کہتا ہے, محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. حالات کی وجہ سے یہ محبت کبھی کبھی دبی رہتی ہے, اور کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ مجھے میری بیوی سے جتنی محبت ہے اتنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مجھے معلوم نہیں ہوتی. کسی کے سامنے ایسا اظہار تو نہیں کرے گا, لیکن محسوس ایسا ہوگا کہ بیوی دن میں 100 مرتبہ یاد آتی ہے اور 24, 48, 72 گھنٹے گزر جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں آتا. جو لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے میرے بیٹے سے جتنی محبت ہے اتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بیٹا 2 منٹ کے لیے بھی دور ہوتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں. اور مدینہ منورہ سے دوری, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری, اس کی وجہ سے اتنا بے چین میں نہیں ہوتا. تو ایسا لگتا ہے یا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے سے جو محبت ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں, اسی طرح اور چیزوں سے. ایسا نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھی ہوئی ہے. مگر پتہ تب چلے گا جب کرنج آئے گا. بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غلط بات کہہ دے پھر دیکھو. بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غلط بات کہہ دے پھر دیکھو کہ تیور بدل جاتے ہیں یا نہیں. جب کرنچ آتا ہے, جب مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف بیوی ہے, بیوی کوئی غلط بات کہہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں, باپ کوئی غلط بات کہہ دے, ماں کوئی غلط بات کہہ دے, دوست کوئی غلط بات کہہ دے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دل میں نظر آئے گا. محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ये मोमिन की कैफियत होती है। और ये ईमान वालों की आला दर्जे की जो मोहब्बत होती है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो कि ईमान ही की बरकत से होती है। चूंकि गैरे मोमिनीन को अपनी जिंदगियों में ऐसी मोहब्बत का तजर्बा नहीं होता, इसलिए मोमिनीन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले में मोहब्बत से सरशार होकर दीवानावार सड़कों पे निकल आते हैं तो दुनिया हैरान हो जाती है और उनको समझ में नहीं आता कि ये भी कोई मसला है जिसके लिए पूरी दुनिया बाहर निकल आई है। इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगियों में जिन जिन मोहब्बतों का मजा चखा है, बीवी की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, सोने की मोहब्बत, चांदी की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, मां बाप की मोहब्बत, इन मोहब्बतों का मैयार और मोहब्बत नबी के मैयार में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए वो नबी मोहब्बत का अंदाजा लगाते हैं अपनी मोहब्बतों के साथ और वो उनको समझ में नहीं आती। बहुत आला दर्जे की मोहब्बत होती है मोमिनीन को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ। अलग अलग दर्जे होते हैं मोहब्बतों के भी, कुछ उशाक बहुत आला दर्जे के होते हैं, वो मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं, वहां से टलते नहीं, हटते नहीं। ऐसे हैं जिन्हें रोजाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है, एक दिन खाली नहीं जाता। जो मदीना मुनव्वरा की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, मदीना मुनव्वरा की खजूरों से मोहब्बत करते हैं, मदीना मुनव्वरा की दरो दीवार से उनको मोहब्बत, हर आन हर घड़ी अपने दिल में इस मोहब्बत को लिए हुए हैं कि मौत हमारी वहां आ जाए। शहादत की मौत बहुत ऊंची मौत है, हर एक को नहीं मिलती। जब किसी की शहादत होती है तो लोग अफसोस करते हैं कि बेचारे इंतकाल कर गए। ये तो ऊंचे लोगों की आरजू है शहादत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खुद तमन्ना करते थे कि काश के मैं बार बार शहादत के मर्तबे पे फाइज होता, बार बार मुझे अल्लाह की खातिर कत्ल किया जाता। ये शहादत बहुत ऊंचा मर्तबा है और जब अल्लाह ताला शानुहु किसी को शहादत अता फरमाते हैं तो समझ जाना चाहिए कि अल्लाह की नजर में ये ऊंचे मर्तबे वाला था। शहादत हर कसो नाकस को नहीं मिलती, शहादत हर छोटे मोटे आदमी को नहीं मिलती, बहुत ऊंचे लोगों को मिला करती है। और ये शहादत इतना ऊंचा मर्तबा है, इतना ऊंचा मर्तबा है, इतना ऊंचा मर्तबा है कि शहीद जब शहीद बनकर अल्लाह के यहां जाता है तो ये आरजू करता है कि अल्लाह दोबारा मुझे दुनिया में भेजो ताकि ये जो शहादत का एजाज मुझे मिला है मुझे दोबारा नसीब हो। नबी नबुवत के मकाम पर फाइज होने के बावजूद इतना ऊंचा मर्तबा नबुवत, और वो भी सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अंबिया, फिर भी तमन्ना करते थे कि काश के मैं बार बार शहीद होता। इसी वजह से अल्लाह ताला शानहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत अता फरमाई। जहर के असर से आपका इंतकाल हुआ, खैबर में किसी ने आपको, किसी दुश्मन ने बकरी का गोश्त खिला दिया जिसमें जहर था, मुंह में रखा तो खुद उसमें से आवाज आई कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है, इस मौजजे का जहूर हुआ, तो आपने थूक दिया बाहर, लेकिन हलक के नीचे थोड़ा उतर गया थोड़ा जहर, ये तकवीनी तौर पर हुआ, इसलिए कि अल्लाह ताला शानहु आपको शहादत की मौत भी नसीब करना चाहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कि वो जो बकरी का जहर आलूद गोश्त मैंने खैबर में खाया था, आखिरी मरहले में फरमा रहे हैं, मैं अपनी रगों में उसका असर इस वक्त पा रहा हूं। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्म रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, ए अल्लाह मुझे तेरे खातिर शहादत अता फरमा, दुश्मनों से लड़ते लड़ते मर जाए शहीद, अपनी जान की हिफाजत में कोई मर जाए वो भी शहीद, कातिलाना हमला हो और अपनी जान को बचाने के लिए उनके साथ तगोदो में इंतकाल कर जाए शहीद, पता ही ना चले और कातिलाना ना हमला हो और मारा जाए वो भी शहीद, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत में, अपनी बीवी अपने बच्चों की हिफाजत में कोई मारा जाता है वो भी शहीद, डूब कर मर जाए वो भी शहीद, बुखार में मर जाए वो भी शहीद, दीवार के नीचे दब कर मर जाए वो भी शहीद, दुश्मन के मुकाबले में जो मरता है वो आला दर्जे का शहीद, लेकिन अल्लाह ताला शानहू ने चूंकि शहादत का मर्तबा बहुत ऊंचा था और उम्मत में बहुत लोग शहादत की तमन्ना करने वाले थे, इसलिए शहादत के बहुत सारे दरवाजे खोल दिए, एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाए शहीद, तो हजरत उमर रजी अल्लाह उन्हें ये दुआ कर दी थी कि अल्लाह मुझे आला दर्जे की शहादत अता फरमा, आला दर्जे की शहादत अता फरमा। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सिदके दिल से शहादत की तमन्ना करता है सच्चे दिल से कि काश के मैं भी शहीद होकर मरूं, शहादत के मर्तबे पर फाइज होकर मरूं, तो आराम देह बिस्तर में उसका अगर इंतकाल होगा आराम के माहौल में, उसके बावजूद अल्लाह ताला शानहु कियामत के दिन उसे शहीदों के साथ उसका हश्र फरमाएंगे। तो आला दर्जे की शहादत मुझे आता फरमा, हजरत उमर रजी अल्लाह उन्हें दुआ करते थे, मगर साथ में आला दर्जे की शहादत अता फरमा और मदीना मुनव्वरा में, अल्लाहुम्म रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वज़अल मौती फी बलदि रसूलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मौत तेरे रसूल के शहर में हो। और अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने दोनों बातें पूरी फरमाई, शहादत भी नसीब हुई और शहादत भी मिली मदीना मुनव्वरा में, फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए कि दुश्मन ने हमला कर दिया, अभी तो तकबीर तहरीमा ही बांधी थी, अल्लाहु अकबर कहा था कि हमला कर दिया दुश्मन ने पीछे से और शहीद कर दिया। तो ये जो इश्क नबवी है वो इतना आला दर्जे का होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाली जितनी चीजें हैं उन सबसे मोहब्बत होती है, सबसे मोहब्बत कि मौत भी मदीने में आए, दफन भी हो जाऊं मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबी से मोहब्बत हो जाती है, मक्का मुकर्रमा से मोहब्बत हो जाती है, कुरान से मोहब्बत हो जाती है, हदीसों से मोहब्बत हो जाती है, सुन्नतों से मोहब्बत हो जाती है, सहाबा से मोहब्बत हो जाती है, सहाबा से मोहब्बत, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم, جن کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ہے, اور اگر صحابہ کی اپنے دل میں یا صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی اپنے دل میں نفرت پاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم, وہ میری نفرت کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ یہ محبت کا قاعدہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ہر ادا پسند آتی ہے اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. یہ مجنو کے اشعار ہیں. وہ کہتا ہے کہ امر علی الدیار دیار لیلا, میں جب لیلا کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہوں, اقبل ذل جدار وذل جدار, تو میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس کو, تو کیا مجھے ان دیواروں سے محبت ہے, ان گھروں سے محبت ہے؟ وما حب الدیار شغفن قلبی, ان گھروں کی محبت میرے دل میں پیوست نہیں ہوئی ہے. ولیکن حب من سکن الدیار, ان دیواروں کے پیچھے جو میری محبوبہ ہے, جس کی طرف یہ دیواریں منسوب ہو گئی ہیں کہ میری محبوبہ کے گھر, میرے محبوبہ کے مکانات, میرے محبوبہ کی دیواریں, میری محبوبہ کی گلی, مجھے اس سے محبت ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے ان سب چیزوں سے محبت. بس میرے بھائیو, طویل گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ جو دل میں محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے, اسے بڑھاؤ, اسے بڑھاؤ, اسے بڑھاؤ. یہ محبت جب بڑھتی ہے تو پھر یہ محبت خود انسان کو دین پہ لے آتی ہے. اسے کہ دین کا تعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جتنی ان کی محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی دین زندگیوں میں آتا چلا جائے گا. بڑھاؤ محبت کو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. ایک ختم ہو گئی دوسری کتاب پڑھو, دوسری ختم ہو گئی تیسری کتاب پڑھو, تیسری ختم ہو گئی چوتھی کتاب پڑھو. عوام کو بھی, علماء کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے. اس سے دل میں محبت بڑھتی ہے, دل میں محبت بڑھتی ہے, محبت بڑھتی ہے, محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بڑھتی ہے کسی کے کمال کو دیکھ کر. محبت پیدا ہوتی ہے کسی کے کمال کو دیکھ کر, کسی کے کمال کو, کوئی ایکسلنس دیکھ کر, ایکسلنس دیکھ کر کے محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. کسی کو کرکٹ کا شوق ہے, کرکٹ میں بھی بیٹنگ کا شوق ہے, تو اچھا بیٹسمین ہوگا, یہ ایک ایکسلنس ہے. دنیاوی ایکسلنس ہے, ایک ایکسلنس ہے, تو اچھے بیٹسمین کو دیکھ کر دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اس کو بالنگ کا شوق ہے تو اچھے بالر کو دیکھ کر دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. کسی کو آرکیٹیکچر کا شوق ہے تو اچھی بلڈنگ کو دیکھ کر اس کو بنانے والے آرکیٹیکٹ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. کسی کو تقریر اور خطابات سے دلچسپی ہے تو اچھے مقرر کو سن کر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. ایکسلنس کو دیکھ کر محبت پیدا ہوتی ہے, کمال, کمال کو دیکھ کر محبت پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز, خوبصورتی کو دیکھ کر محبت پیدا ہوتی ہے, یہ بھی ایک ایکسلنس ہے, خوبصورتی کو دیکھ کر. اور تیسری چیز, احسان کا جب علم ہوتا ہے کہ اس کا میرے اوپر یہ احسان ہے. ایک شخص آیا, بھئی یہ کون ہے؟ تو کہ ڈاکٹر گلریز ہیں. اچھا اچھا, ہوں شکل و صورت دیکھی تو کوئی دل نے یہ قبول نہیں کیا کہ ایکسیپشنل بیوٹی ہے, चलो ये चीज नहीं है। कमाल का कुछ पता ही नहीं, इसे के पहली दफा देखा, पता ही नहीं कि है कौन, क्या है। और थोड़ी देर के बाद कान में किसी ने कहा कि ये साहिब जो आए हुए हैं ये वही है जिनका चर्चा आपको कई सालों से सुनाया जा रहा है। भाई क्या, तो कि एक मतलब आप डूब रहे थे, इन्होंने आपको निकाला था। बस ये दो मिनट पहले जो डॉक्टर गुलरेज का तस्वीर था उसमें, और अब इस वाक्य को सुनने, इस जिक्र के बाद कि इनका आप पर एहसान है, इन्होंने आपकी जान बचाई है, ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा हो जाती है फौरन। अब गले लगाने को दिल करता है, खिलाने को दिल करता है, अपने घर में बुलाने को दिल करता है, हदायत तहाइफ देने को दिल करता है। एहसान, एहसान से दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है, खूबसूरती से दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। लोग जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, वह एक मरतबा गए, दो मरतबा गए, तीन मरतबा गए, किसी न किसी वक्त दिल भर जाता है, लेकिन खूबसूरती खींचती है। अच्छी सीनरी को देखने के लिए जाते हैं, फॉल्स को देखने के लिए जाते हैं, विक्टोरिया फॉल्स, नायग्रा फॉल्स, मर्द औरत से, औरत मर्द से मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है ब्यूटी की वजह से। तो खूबसूरती की वजह से दिल में मोहब्बत पैदा होती है, एहसान की वजह से दिल में मोहब्बत पैदा होती है, और कमाल की वजह से दिल में मोहब्बत पैदा होती है। तो ऐसी किताबों को पढ़ो जिनसे आपको पता चले कि उनमें सिर्फ एक कमाल नहीं था, वो सारे कमालात के सरचश्मा थे, वो फाउंटेन ऑफ एक्सेलेंसीज थे, एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्सेलेंसीज थे, कमालात के गुलदस्ता थे, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है। मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जहां के सारे कमालात एक तुझ में है। इस आलम में अल्लाह ताला शानू ने जितने कमालात पैदा किए हैं वो सारे के सारे आपके अंदर मौजूद है। जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। पर आपके अंदर जितने कमालात है वो दूसरों में, दूसरों के कमालात आप में ढूंढते हैं तो पाए जाते हैं। ईसा अलैहि सलाम में जितने कमालात नजर आए, आप में ढूंढा तो मिल गए सारे। आदम अलैहि सलाम के जितने कमालात थे, आप में ढूंढा तो सारे मिल गए। मूसा अलैहि सलाम के सारे कमालात आप में मिल गए, लेकिन आपके जितने कमालात हैं, चूंकि सबके कमालात आप में है, इसलिए आपके कमालात जब दूसरों में ढूंढते हैं तो दो चार नजर आते हैं। कमाल, मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। बहुत अच्छे सर्जन है ये, बहुत आला दर्जे के सर्जन। इन्होंने फुला 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 ऑपरेशन बड़ी कामयाबी से किए। भाई मालूम ही ना हो तो मोहब्बत कैसे पैदा होगी? एक छह फुट के इंसान को आप देखते रहे, ये जो आपके सामने बैठे हैं इन्होंने ताजमहल बनाया है, ये जो आपके सामने बैठे हैं इन्होंने मीनारे पाकिस्तान बनाया है, आपको पता ही ना हो, आपको कोई बतलाए ही नहीं, आप किसी किताब में पढ़े ही नहीं, तो उसकी मोहब्बत आपके दिल में कैसे पैदा होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात से तो किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें जब मालूम ही ना हो तो मोहब्बत कैसे दिल में पैदा होगी? इसलिए दिल में मोहब्बत पैदा करने का एक तरीका है कि कमालात नजर आए। पढ़ेंगे तो नजर आएंगे, सीरत की किताबें पढ़ो, हुस्नो जमाल नजर आए, खूबसूरती पढ़ो किताबें तो हुस्नो जमाल नजर आएगा, एहसान नजर आए, पढ़ो किताबें तो एहसान भी नजर आएगा। ये तीन चीजें हैं, इनमें से कोई एक भी नजर आ जाएगी तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो बस आज का सबक इतना ही है, अपने दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करो। बस ये मोहब्बत पैदा हो गई तो आगे फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। फजर की नमाज पढ़ो, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जकात दो, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सुन्नत तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उलमा के पास जाकर के दीन सीखो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। مشائخ کے پاس جا کر اپنا تزکیہ کراؤ, کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر چیز میں ایک اصل بیج ہوتا ہے, بیج. وہ بیج پڑ جاوے, اصل تو بیج ڈالنے کی ضرورت پیش آتی ہے, اور اس کو پانی ڈالو بیج کو, تو بیج تو آپ کو ڈھونڈ کر لانا پڑے گا کہیں سے, لیکن درخت کی شاخیں آپ کو کہیں ڈھونڈنے کے لیے جانا نہیں پڑے گا. وہ بیج اگر آ گیا تو وہ خود بخود نکل آئے گی. پھل ڈھونڈنے کے لیے جانا نہیں پڑے گا, پھول پتے تنا. ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے, تنا ایک بیج, بیج سے پھر آگے خود بخود سب کچھ ہوتا ہے. اپنے دل میں محبت پیدا کرو, اور محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کمالات کو معلوم کرو. کمالات, خوبصورتی کو معلوم کرو, خوبصورتی کو معلوم کرو, خوبصورتی کو معلوم کرو. ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا, ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ, آپ کیسے لگتے تھے, آپ کیسے نظر آتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا بنی, یہ میرے بیٹے, لو رأیتہ رأیت الشمس طالیتن, اگر تیری نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑ جاتی تو تجھے ایسا معلوم ہوتا کہ صبح کے وقت سورج طلوع ہو رہا ہے. ایسا نقشہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کھینچا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو جذب کر لیا تھا. تو پڑھو کتابوں میں. آج ہر شخص یہ تہیا کر لے, ان شاء اللہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن ہم مقرر کر کے سیرت طیبہ کے دو تین صفحے ضرور پڑھیں گے. ارادہ کرو بھائی اس کا, اور یہ صرف وہ رسمی ارادہ نہیں, پکا ارادہ کرو, علماء بھی اور عوام بھی سب. اور اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ میں کس کتاب سے شروع کروں تو اپنے شیخ سے پوچھو, اپنے استاد سے پوچھو, اپنے امام صاحب سے پوچھو, لیکن شروع کر دو. جمعے کا دن, جمعرات کا دن, شب جمعہ تھرسڈے, یا جمعے کا دن, جمعرات, جمعہ, یا پھر ویکینڈ میں اگر بزی ہیں تو ایک دن مقرر کر لو کہ اس دن ایز اے فیملی بیٹھ کر کے ہم سیرت کو پڑھیں گے. سیرت کی کتاب پڑھتے رہو, اس میں آپ کو کمال بھی نظر آئے گا, اس میں آپ کو جمال بھی نظر آئے گا, اور اس میں آپ کو نوال بھی نظر آئے گا. عربی میں احسان کو نوال کہتے ہیں. کمال بھی نظر آئے گا, جمال بھی نظر آئے گا, نوال بھی نظر آئے گا. احسانات اتنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر, احسانات اتنے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمیں کبھی رمضان مبارک میں حرم شریف میں جب جاتے ہیں, ہم میں سے ہر شخص یہ ایکسپیرینس کرتا ہے کہ دل عبادت میں لگتا ہے, تو ہم لوگ ہوٹل میں نہیں جاتے, ہمارے ساتھ ہی انتظار میں رہتے ہیں, بیوی انتظار میں, بچے انتظار میں, تو ہم جا کر کے کہتے ہیں کہ اصل میں تھوڑا دل لگ گیا تھا, تو سوچا کہ یہ دل لگا ہوا ہے تو میں ذرا کچھ طواف کر ہی لوں, میں کچھ عبادت کر ہی لوں, ہے نا. دیکھو ہم دوسروں کا خیال نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دل لگتا ہوگا, اللہ اکبر, جب وہاں تار جڑتا ہوگا, جب وہاں کنیکشن ہو جاتا ہوگا نماز میں, عبادت میں, اسے چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے فلاں عمل کو اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے, اور قیامت تک انہیں پھر یہ عمل کرنا پڑے گا, اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہوا. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کبھی کبھی تار ایسا جڑ جاتا ہے کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں نماز کو ذرا طویل کروں, لیکن اچانک میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि उसकी मां पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी, तो मैं रुकू में चला जाता हूं और नमाज को खत्म कर देता हूं। एहसान है कि नहीं है जी? अब आप कहेंगे कि वो तो उस औरत पर एहसान है। नहीं, ये एहसान उम्मत पर करके गए कि दूसरे इमामों को भी सिखा के गए कि आप लोग नमाज इस तरह पढ़ाओगे उम्मत के किसी फर्द को तकलीफ ना पहुंचे। सब पर एहसान करके गए। एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु आए और उन्होंने शिकायत की कि फुला इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। हजरत उबय इब्ने काब के साथ भी ये वाकया हुआ, मुआज़ इब्ने जबल के साथ भी ये वाकया पेश आया। दो अलग अलग मस्जिद में इमाम थे, एक फजर की नमाज एक ईशा की नमाज, के बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इताफ फरमाया, खफगी का इजहार फरमाया, थोड़ा गुस्सा दिखाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल बनाया कि इदामा अहदुकुम फलयुखफिफ, जितनी लंबी नमाज पढ़नी हो पढ़ते रहो अगर तनहा पढ़ रहे हो तो, लेकिन जब तुम में से कोई इमामत कराए तो नमाज को हल्की पढ़े। क्यों? फइन नफीकुम अज़ईफ वल कबीर वदल हाजा, इसलिए कि तुम्हारे पीछे कभी कमजोर आदमी होता है जिसके लिए तवील क़याम मुश्किल हो जाता है, बूढ़ा होता है जिसके लिए लंबा रुकू मुश्किल हो जाता है। और ये तुम में से पीछे कोई दुनियावी हाजत वाला भी होता है, यानी दुनियावी हाजत वाले का भी ख्याल रखो। क्या दुनियावी हाजत भाई? कि बीवी इंतजार कर रही है और मुझे दुकान में से जाकर के आटा पहुंचाना है, ये जुलहाजा। हो सकता है कि तुम्हारे पीछे ऐसा मुसल्ली हो जो ये सोचकर आया हो कि नमाज 7:30 बजे है, 7:45 बजे तक में खत्म हो जाएगी। बयान तो नहीं है ना, बयान में से तो कोई भी उठ के जा सकता है, नमाज कैसे जाए, कैसे जाए नमाज में से? तो 7:45 बजे नमाज खत्म हो जाएगी और ट्रेन मेरी 8 बजे है, मैं पहुंच जाऊंगा, 10 मिनट का फासला है मस्जिद से, और आपने नमाज तवील कर दी, वो जुलहाजा है, हजत वाला है वो। इस कदर एहसानात है मेरे भाइयों, इस कदर एहसानात, एक एक हदीस में एहसान, एक एक अमल में एहसान उम्मत पर। उम्मत के लिए रोना धोना हो तो एक अलग बात, उम्मत के लिए रोना धोना ये तो एक अलग मुस्तकिल बाब कि उम्मत के लिए रोते थे, उम्मत के लिए अल्लाह मेरी उम्मत है, अल्लाह मेरी उम्मत है, अल्लाह मेरी उम्मत। कयामत के दिन रोएंगे, अल्लाह मेरी उम्मत है, अल्लाह मेरी उम्मत है, अल्लाह मेरी उम्मत। जब नफसी नफसी का आलम होगा, हर नबी भी नफसी नफसी कह रहा होगा, उस वक्त हर शख्स को जब देखा जाएगा तो यह नजर आएगा कि हर एक को अपने अलावा भूला हुआ है, अपने अलावा हर एक को भूला हुआ है। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा जाएगा तो नजर आएगा कि उम्मत के खातिर खुद को भूला हुआ है, बजाय नफसी नफसी कहने के उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। एहसानात का एक तवील दफ्तर, हुस्नो जमाल इतना कि अल्लाह ताला शानहू ने ऐसी सूरत पैदा ही नहीं की, फरिश्तों से भी ज्यादा खूबसूरत, फरिश्तों से भी ज्यादा खूबसूरत। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो कि बीबी हैं आपकी, वो ये कहती हैं के लवाही जुलेखा लव रई न जबी न हु लाथर न कत अल कुलूब अल ईदी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ के हुस्ने जमाल को देखा तो मदहोश हो गई। फलम्मा रई न हु अकबर न हु वकत्ता न ईदी हन, उन्होंने अपने हाथ काट डाले, हाथ में फ्रूट था, फ्रूट काटने के बजाय उंगलियां काट डाली, ख्याल नहीं रहा कि हम फ्रूट को काट रहे हैं या हाथ को। वकुलना हाशा लिल्लाह मा हादा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, मा हादा बशरा, ये इंसान नहीं है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो मुअज्जज फरिश्ता है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अगर वो जुलेखा की सहेलियां मेरे महबूब को देख लेती, मेरे सरताज को देख लेती, तो उंगलियां नहीं अपने सीने को चाक करके दिलों को काट देती। لَآثَرْنَ قَتْعَ الْقُلُوبِ عَلَى الْعَيْدِ, وہ ہاتھوں کے بنسبت دلوں کو کاٹنے پہ مجبور ہو جاتی. حسن و جمال اعلیٰ درجے کا, احسان اعلیٰ درجے کا, اور کمال وہ تو کمالات کا سر چشمہ, کمالات کا سر چشمہ. تو میرے بھائیو دیکھو, یہ بہت ہی اجمالی طور پر, بہت ہی اختصار کے ساتھ جب ذکر نبی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جمال کے حوالے سے, کمال کے حوالے سے, احسان کے حوالے سے, تو دل میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ محبت محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کہ کاش کہ میرے پاس پر ہوتے اور کوئی ایسی شکل ہوتی کہ میں اڑ کر کے روضہ پاک کے اندر چلا جاتا اور میرے نبی سے لپٹ جاتا, ان کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرتا. یہی تو محبت ہے, یہ محبت. اے باد صبا رک رک کے تو جا, روزے کے مکی سے یوں کہنا. ایک شاعر حج کے زمانے میں کہتا ہے, اے باد صبا رک رک کے تو جا. باد صبا, صبا ایک بہت ٹھنڈی میٹھی ہوا ہوتی ہے, تو کہا کہ اے باد صبا تو آہستہ آہستہ جا. اے باد صبا رک رک کے تو جا, روزے کے مکی سے یوں کہنا, میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں مدینہ منورہ آ سکوں. غریب آدمی ہوگا بےچارا, تو کہتا ہے کہ یہ باد صبا رک رک کے تو جا, روزے کے مکی سے یوں کہنا, میں دل ہی دل میں روتا ہوں جب لوگ مدینے جاتے ہیں. میں دل ہی دل میں روتا ہوں جب لوگ مدینے جاتے ہیں کہ یہ مدینے جا رہے ہیں اور میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. بس یہی آج ایک ہی گزارش ہے, ایک ہی گزارش, اپنے دل میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اسے بڑھاؤ, خوب بڑھاؤ, خوب بڑھاؤ, خوب بڑھاؤ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, خوب بڑھاؤ, اتنی بڑھ جائے, اتنی بڑھ جائے, اتنی بڑھ جائے کہ بس ساری محبتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. آئندہ کل ہمارا ماہانہ پروگرام ہے, ہو سکتا ہے کہ اسی مضمون کو آگے چلاؤں کل. بہرحال دل میں محبت ہو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو بھائی سب پکا ارادہ کرتے ہیں نا, گھروں میں جو اس وقت سن رہے ہیں وہ بھی سب بعد میں سی ڈی کے ذریعے کسی اور ذریعے سنیں گے, تو یہ وعدہ کرو سب کہ انشاءاللہ ہم روزانہ سیرت پاک کو پڑھیں تو بہت اچھا, لیکن روزانہ نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ اچھی اچھی سیرت کی کتابوں کو پڑھو اور دیکھو کہ کمال نظر آتا ہے یا نہیں, حسن و جمال نظر آتا ہے یا نہیں, نوال نظر آتا ہے یا نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے, ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے آپ کے چہرے انور کو, آپ کی ادا اتنی محبت تھی اداؤں سے کہ اس کو نقل کرتے تھے, نقل کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ چھوڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 سال ہو گئے ہیں, 6 سال, اور 6 سال کے بعد جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے 1300-1400 صحابہ کے ساتھ, اور روکا, مشرکین نے روکا. تو اب جو ہے ایک جنگ کی شکل پیدا ہو گئی, تو کہا کہ کوئی کمپرومائز ڈھونڈو, مصالحت کی کوئی شکل. تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ تشریف لے جائیے. تحمل بہت زیادہ تھا آپ میں. تو جب وہ اندر گئے تو ان کے دوست نے کہا جو لے جا رہا تھا کہ عثمان یہ تم نے جو تمہاری لونگی آدھی پنڈلی پر پہنی ہوئی ہے یہ مکہ مکرمہ والوں کے نزدیک بہت معیوب ہے, اس لیے کہ یہاں تو ہر شخص اپنی لونگی کو لٹکاتا ہے تخنوں کے نیچے, तो जहां सब लोग लुंगियों को टखनों से नीचे पहनते हो वहां अचानक एक आदमी यहां तक की लुंगी पहन के चला जावे, मायूब समझा जाता है। इसलिए अपनी लुंगी को जरा नीचे करो। तो नीचे करने का मतलब यह नहीं कि जो मकरूह है तहरीमी काम है वो करो, कि टखनों से भी नीचे ले जाओ, ये नहीं, जरा और थोड़ा ताकि उनसे करीब तो हो जाओ। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह उन्होंने मना फरमा दिया कि ना ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ये। हद ही अधरत साहिबी ना, ये लुंगी की स्टाइल जो आप देख रहे हैं ये हमारे हजरत की स्टाइल है, ये हमारे हजरत की स्टाइल है, इसे हम नहीं छोड़ सकते। हालांकि फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सबसे अफजल तरीका ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुंगी मुबारक को यहां तक पहनते निसफे साक। और मोहब्बत कितनी होगी कि इतने सालों के बाद आ रहे हैं तो कहा कि उस्मान जब तुम मक्का मुकर्रमा में आ ही गए हैं तो ऐसा करो कि तवाफ तो कर लो, कम से कम तवाफ कर लो। तो उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि मेरे आका तवाफ से महरूम किए जाए और उस्मान तवाफ कर ले, कैसे हो सकता है कि आका को तो रोका जाए और उस्मान इतना बेगैरत हो कि वो तवाफ कर, तवाफ नहीं किया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। 6 साल के बाद मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आते हैं, तवाफ की फजीलत जानते हैं, उस पर जो अनवार बरस रहे होंगे वो नजर आ रहे होंगे। हजरत उस्मान गनी बहुत ऊंचे दर्जे के आदमी थे और दिल ने चाहा भी होगा लेकिन कहा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हम तवाफ नहीं कर सकते, तवाफ करेंगे तो उनके साथ करेंगे। ये मोहब्बत, ये मोहब्बत। अल्लाह ताला शानहु हमें तौफीक अता फरमाए मेरे भाइयों, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। बस ये दिल में मोहब्बत पैदा करो, दिल में मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत है, मोहब्बत उसे बढ़ाओ। इतनी मोहब्बत हो जाएगी नजर आए तो क्या करना है, उसके लिए पढ़ना है सीरत को, हालात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और दूसरा क्या काम करना है, आपस में भी तज़किरा हो। हबी साहब ने सीरत में कोई अच्छा वाकिया पढ़ लिया, मुझसे मुलाकात हो गई, हफ्ते में एक दफा बैठते हैं चाय पर, तो हबी साहब कहें कि भाई दूसरी बातें भी करेंगे बाद में, पहले एक किस्सा सुन लो सीरत का। तो मैं कहूं कि हां आप पहले सुना दो, मैं भी आपको दो सुनाने वाला हूं। जिक्र रसूल हो, जिक्र रसूल, नाम उनका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे टपक जाएंगे। जैद अमर बकर हर एक की बात करते हैं, बात नहीं करते तो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, जिनके सदके हम जी रहे हैं, जिनके सदके हम खा रहे हैं, जिनके सदके हम पी रहे हैं, जिनके सदके हम सांस ले रहे हैं, और जिनके सदके कयामत के दिन हम जन्नत में दाखिल हो सकेंगे जहन्नम से में जाए बगैर, अगर जिक्र नहीं है तो उनका नहीं। और अगर कोई जिक्र करता है तो हमें बोरिंग लगता है, बोरिंग लगता है, कहीं चले जाओ, कहां ताजियत में चले जाओ, ताजियत में चले जाओ, किसी जगह शादी में चले जाओ, और वहां अगर किसी ने जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू कर दिया तो एक एक करके लोग उठ जाएंगे। अब तो ऐसा माहौल भी बन गया है, ताजियत के लिए जाते हैं तो 2 कमरे होते हैं, एक कमरे में दीनी मिजाज के लोग और दूसरे कमरे में दुनियावी मिजाज के लोग। हाँ हाँ, आप मेरा इत्तेफाक करेंगे इस बात में, नजर आता है सब कुछ। दीनी मिजाज के लोग एक कमरे में, इसलिए कि ये वो सब दीन की बात करते हैं, दुनियावी मिजाज के लोग अलग, खान का ही कोई आदमी हो, तबलीगी आदमी हो, तो उनको वो जो खादिम होते हैं उनको भी पता होता है कि किसको किस कमरे में बिठाना है, तो उधर ही गाइडिंग करते। और अगर एक ही कमरे में बैठे हुए हैं और अगर कोई मौलवी अंदर दाखिल हो गया, कोई तबलीगी दाखिल हो गया, और लोगों को ऐसा खदशा हुआ कि अब ये थोड़ी देर में आखिरत की बात शुरू कर देगा, तो फर फर लोग उठना शुरू कर देते हैं। हम मौत के बारे में सुनना नहीं चाहते, आखिरत के बारे में सुनना नहीं चाहते, दीन के बारे में सुनना नहीं चाहते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब आदमी बात करता है, सुनता है, तो पता ही नहीं चलता कि वक्त कहां जा रहा है। लेकिन वो हमारे लिए बोझ। क्रिकेट की बात शुरू हो जाए, फुटबॉल की शुरू हो जाए, पॉलिटिक्स की शुरू हो जाए, उससे भी आगे फिल्मों की और एक्टरों की शुरू हो जाए, गानों की और गाने बजाने वालों की शुरू हो जाए, तो हम बोर नहीं होते। छोटे अपने बच्चों को भी उनकी उम्रों के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पढ़कर सुनाओ। किससे सुनाओ? सहाबा के किस्से सुनाओ। सहाबा के किस्से भी सीरत ही का हिस्सा है। औलिया के किस्से सुनाओ, ये भी सीरत ही का हिस्सा है। ये सब फैजान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुनिया में जो भी अच्छाई भलाई नजर आती है, ये फैजान है आमिना के लाल का। मुहद्दिस फन्ने हदीस की चोटी पर पहुंचता है, आमिना के लाल का फैजान है। मुफस्सिर तफसीर की चोटी पर पहुंचता है, ये भी आमिना के लाल का फैजान है। असद फयूज़े दरे मुस्तफा का क्या कहना, जिसे जो भी सआदत मिली, जितनी मिली वहीं से मिली, जो भी मिली और जितनी मिली सआदत की, जितनी वो वहीं से मिली। तो भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, ऐसी किताबों को पढ़ो जो सीरत पर मुश्तमिल हो, और जिक्र करो आपस में, बातचीत करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह से दुआ भी मांगो कि अल्लाह हमारे दिलों को अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर फरमा दे। ये अल्लाह हमारे दिलों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर फरमा दे। ये अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। और ऐसे लोगों के पास बैठो जिनके दिलों में इश्क़े नबवी है, इसलिए कि जिसकी सोहबत में बैठते हैं तो उसके दिल में अगर बुराइयां हैं तो वो बुराइयां मुंतकिल होती हैं, अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयां मुंतकिल होती हैं। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो मेरे भाइयों, एक बात कह के खत्म करता हूं, जानवरों तक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी मुबारका थी जिसका नाम है अल कसवा। अल कसवा, तो जब आप सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का मुकर्रमा की तरफ जा रहे थे उस वक्त भी उसी पर तशरीफ फरमा थे, अल कसवा। तो वो रुक गई, और जब जानवर रुक जाता है तो उसे एड़ लगाते हैं, चाबुक से उसकी खबर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल हटी नहीं, बिल्कुल हटी नहीं। तो लोगों ने कहना शुरू किया, खलातिल कसवा, खलातिल कसवा, कि कसवा अड़ गई, कसवा अड़ गई, आगे बढ़ नहीं रही है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए ऊपर, बाकी सब आपके पीछे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा खलातिल कसवा वलैस लहा बिखुलुकिन, कसवा अड़ी नहीं है इसलिए कि ये अखलाक कसवा के नहीं है, ऐसा बुरा खुलुक नहीं है उसके पास कि वो अड़ जावे और जिद्दी बन जावे। तो अल्लाह के पैगंबर की ऊंटनी है, ये कैसे रुक सकती है? फिर क्यों रुक गई? वलाकिन्नहा हबसहा हाबिसुल फील, वो हाथियों वाले जब बैतुल्लाह को मुनहदिम करने के लिए चढ़ाई करके आए थे और वो हाथियों को अल्लाह ने रोक दिया था, तो कहा जिसने हाथियों को रोका था उस दिन, आज उसने मेरी कसवा को रोक दिया है, और अल्लाह की तरफ से यह इशारा है कि बस। बहुत मुबारक ऊंटनी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब हुई थी। आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे, मेरे यहां तशरीफ लाइए, मेरे यहां, मेरे यहां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊंटनी को छोड़ दो, फइन्नहा मामूरतुन, छोड़ दो ऊंटनी को, इसलिए कि अल्लाह इस वक्त उसे हुक्म कर रहा है कि मुझे कहां ले जाए। तो उसने एक चक्कर लगाया यूं, और चक्कर लगा करके एक जगह पर बैठ गई। चलते चलते उसने ऐसा एक चक्कर लगाया और चक्कर लगा करके एक जगह पर बैठ गई। बाज़ उलमा ने लिखा है कि जो चक्कर लगाया था वही रौज़तुन मिन रियादिल जन्ना है। उस वक्त वहां मस्जिद बनी हुई नहीं थी, जहां उसने यूं करके चक्कर लगाया और चक्कर वही रौज़तुन मिन रियादिल जन्ना है और चक्कर लगाकर आगे जाकर के बैठ गई। वहां हजरत अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का घर था, बैठ गई वहां। अल्लाह की रहनुमाई में चलती थी वो ऊंटनी। उसको कितनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं वो बताना चाहता हूं। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और उधर उसने खाना पीना बंद कर दिया। और खाना पीना हुज़्नो मलाल में बंद रहा जब तक के उसने अपनी जान न दे दी। जान दे दी उसने, इतना गम हुआ उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक का कि खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया और उसी में उसकी जान चली गई। बहुत कोशिश की खिलाने पिलाने की लेकिन नहीं। और ये तो अपनी जगह पर खजूर का तना उसके साथ टेक लगा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, खुतबा दिया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब मिंबर बनाया गया, मिंबर पर जाकर के आपने खड़े होकर खुतबा देना शुरू किया तो बच्चों के रोने की तरह उस दरख्त में से रोने की आवाज आई। कितनी मोहब्बत दरख्त को, कितनी मोहब्बत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और उसे अपने सीने से लगाया, जैसे बच्चे को सीने से लगाया। तो हदीस शरीफ में आता है कि जैसे बच्चा रोता है और बच्चे को सीने से लगाते हैं और बच्चे को सीने से लगाने के नतीजे में वो धीरे धीरे रोना छोड़ता है और सिसकियां उसकी सुनाई देती है, तो कहा कि वो खजूर के दरख्त का भी यही हाल हुआ। और इसमें दो तौजीह की है उलमा ने कि रोने की वजह एक ये थी कि मेरे पास अल्लाह का जिक्र हुआ करता था, अब अल्लाह का जिक्र दूर हो गया, और दूसरी वजह यह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मुझे नसीब होता था, वो कुर्ब मेरे हाथों से चला गया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ऐसी ऐसी मोहब्बतों वाले आते थे, ऐसी ऐसी मोहब्बतों वाले। एक शख्स आया और उसने खड़े होकर के सलाम पेश किया तो उसने ये शेर पढ़ा, या खैर मन दुफिनत फित तुराब आदमुहु फताब मिन तीबिहिन अलकाउ वल उकमु नफ्सिल फिदाउ लिकब्रिन अंत साकिनु फीहिल आफाफ व फीहिल जूदु वल करमु। कैसे मोहब्बत होती है तो जुबान पर ऐसी बात आती है। या खैर मन दुफिनत फित तुराब आदमुहु, वो सारे लोग जिनकी हड्डियां यानी जिनके जिस्म में दफन कर दिए गए उनमें से आप बेहतरीन हैं। जितने लोग दफन किए गए हैं उनमें से आप बेहतरीन हैं। ये वो जात जो उन लोगों में बेहतरीन है जिनके जिस्म दफन कर दिए गए हैं, यानी दफन होने वालों में सबसे बेहतर। फताब मिनती विहिन्न अलकाउ वल उकमु, टीले और ये चटियल मैदान आपके जमीन में दफन होने की बरकत से सब के सब बरकत वाले हो गए। आपके जिस्म मुबारक की वजह से ये जमीन बरकत वाली हो गई। नफ्सिल फिदाउ लिकब्रिन अंत साकिनुहु, आप जिस कब्र में आराम फरमा रहे हैं उस कब्र पर मैं मेरी जान को कुर्बान कर दूं, मेरी जान कुर्बान हो उस कब्र के लिए जिसमें आप आराम फरमा रहे हैं। फीहिल अफाफ व फीहिल जूदो वल करम, इसमें इफ्फत और पाक दामनी है, इसमें इफ्फत और पाक दामनी का पैकर है, इसमें जूदो सखा का पैकर है, इसमें रहमो करम का पैकर है। हम लोग तो जाते हैं, मदीना मुनव्वरा करीब आता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो जाते हैं तो तबीयत मचलती नहीं, हैं, बातें कर रहे हैं, नींद निकाल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, दुकानों को देख रहे हैं, है कोई तबीयत में फर्क नहीं आता। और होटल में चले गए तो दिल बेकरार नहीं कि कब वहां पहुंचे, और अगर वक्त आता भी है तो एक रूटीन के तौर पर, रूटीन के तौर पर, जैसे तवाफ भी रूटीन के तौर पर और सलातो सलाम भी रूटीन के तौर पर, वहां भी वीडियो फिल्मिंग से बाज नहीं आते, जो जालियों में झांकने से बाज नहीं आते, धक्कम पील से बाज नहीं आते, औरतें शोर करती करती दौड़ती हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। बस भाई मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा दे, मोहब्बत तुझको आदाब मोहब्बत खुद सिखा दे, दिल में मोहब्बत हो, दिल में मोहब्बत हो। अल्लाह ताला शान, अभी हमारे मुफ्ती इब्राहिम साहिब के वालिद साहिब का इंतकाल हो गया, नेक आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे, हाजी यूसुफ साहिब, उलमा नवाज, उलमा से मोहब्बत करना, गरीब गुरबा परवरी, यहां आए थे तो भी बहुत मोहब्बत फरमाते थे, मेरा जब भी हिंदुस्तान जाना हुआ बहुत मोहब्बत की, भोरिया तक आते थे इटालवा से दावत कहने के लिए, हालांकि टेलीफोन पर भी कह सकते थे, उम्र भी काफी थी। तो मुफ्ती साहब उनकी कुछ अच्छी अच्छी बातें बतला रहे थे, उनमें से एक बात ये कही कि जब हम लोग मदीना मुनव्वरा पहुंचे उम्रे में तो खामोशी थी उन पर, और खामोशी को उन्होंने तोड़ा और मुझसे ये कहा कि कब्र मुबारक पर जाने को दिल तो बहुत चाह रहा है, कब्र मुबारक पर जाने को दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन जरा शर्म आ रही है इसलिए कि मैं गुनहगार हूं। हमें एहसास होता है, दिन में 5-5 मरतबा वहां जाते हैं तो बहुत खुश भी होते हैं कि हमने 5 मरतबा सलातो सलाम पढ़ा वहां जाकर। मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को सलाम पेश किया जाता है, तो बाई तरफ एक सुतून है, बाई तरफ, और जहां हजरत उमर रजी अल्लाह ने, वहां भी दाई तरफ राइट हैंड साइड पर एक सुतून है। तो मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने किसी जगह पढ़ा कि जब वो सलाम पेश करने के लिए जाते थे, उस वक्त आजकल जो वहां निजाम है वैसा नहीं होता था, आराम से लोग खड़े होकर सलाम पेश करते थे, तो बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर सलाम नहीं पेश करते थे, उस सुतून के पीछे छुपकर सलाम पेश करते थे। जैसे एक गिल्टी आदमी हो, मुजरिम शख्स हो, जिसने अपने बड़े की मंशा के मुताबिक काम न किया हो, और वो जब जाना तो पड़ता ही है, तो जब वो जाता है तो जैसे छुप छुप कर पीछे बैठता है, हजरत की मजलिस में जाते हैं मगर गलती हुई हो तो जरा पीछे बैठते हैं, हया शर्म। और हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह तो एक तवील मुद्दत तक आगे आए ही नहीं, आगे तशरीफ ही नहीं लाए, और कदम मुबारक की तरफ से सलाम पढ़ते थे, और ये फरमाते थे कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं आगे मुंह किस मुंह से जाऊं आगे। कैसी मोहब्बतें हैं, किस दर्जे की मोहब्बत, किस दर्जे की मोहब्बत है। ऐसे बुजुर्गाने दिन गुजरे हैं कि दुरूद पाक पढ़ते थे, दुरूद पाक तो यूं गुलाब का पानी लेते थे और यूं करके मिसवाक से यूं करके यूं जुबान के ऊपर गुलाब का पानी यूं घुमाते थे और फिर दुरूद पाक पढ़ते थे, फिर मिसवाक से यूं जुबान पर गुलाब का, और फिर है ना कि फारसी में एक शायर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह कहा है कि हजार मरतबा भी मैं अगर अपनी जुबान को गुलाब के पानी से धोऊं, फिर भी मेरी जुबान इस काबिल नहीं बनती कि आपका जिक्र कर सके। एक एक मैं ये नहीं कहता कि मुझे और आपको भी करना चाहिए, यह काम किया नहीं जाता, यह करवाया जाता है, यह करने का काम नहीं। हजरत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा पहुंचे, ऊंटनी पर से नीचे उतर पड़े, और चप्पलें भी उतार दी और पथरीली जमीन में चलते चलते गए। जब मदीना मुनव्वरा नजर आया, हाल था ये हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह पर, यह हालत नहीं थी तो आप नहीं उतरे। तो गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तो ऊंटनी पर बैठे रहे और हजरत नानूदवी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर काफिले के दूसरे लोग जो नीचे उतर पड़े तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह ने फरमाया कि भाई तुम कहां जा रहे हो। हजरत ने फरमाया कि तुम कहां जा रहे हो, उन पर तो इश्क नबवी का एक हाल इस वक्त तारी है, तुम बैठे रहो ऊंटनियों के ऊपर। लेकिन नहीं माना उन्होंने कि हम भी हजरत के, उन्होंने भी जूतियां उतार दी, लेकिन वो नोकीले दो तीन पत्थर लगे ना तो फिर जल्दी से ऊंटनी पर बैठ गए। तो मेरे भाइयों, ये इश्क नबवी हमारे दिलों में पैदा हो। इस वक्त पूरी दुनिया में दो मेहनतें हो रही हैं, दो मेहनतें हो रही हैं। एक मेहनत किया कि इस्लामी तालीमात को मशकूक किया जाए, शक पैदा किया जाए इस्लामी तालीमात में, शक। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वो शरीयत मुतहरा के वो अहकाम जो लॉजिक से समझ में नहीं आते और इस वक्त के माहौल में लॉजिक उसके खिलाफ है। देखो, लॉजिक बदलती रहती है, लॉजिक का ताल्लुक माहौल से है, लॉजिक का ताल्लुक माहौल से है। तो लॉजिक से जो चीजें समझ में नहीं आती, लॉजिक से, उसके बारे में हमारे अखबारों में भी आर्टिकल्स आते हैं, यूट्यूब के ऊपर दर्जनों प्रोग्राम होते हैं, नौजवानों के जहन बनाए जाते हैं, बच्चों के, बच्चियों के, यूं के, शक के। एक हुक्म में अगर शक पड़ गया तो वो दिन को छोड़ देगा। मशकूक, इस्लामी तालीमात को मशकूक किया जा रहा है, एक ही मेहनत है। इसलिए कि इस मेहनत में अगर किसी को कामयाबी मिल गई तो समझो कि गया दीन से। और दूसरी मेहनत पैगंबर इस्लाम की जात को मजरूह और दागदार करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा जज्बा क्या होना चाहिए कि लॉजिक कबूल करे या न करे, समझ में आए ना आए, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। मेरी अकल की कोई हैसियत नहीं, अल्लाह के हुक्म की हैसियत है। दुनिया के सारे दानिश्वर और थिंकर्स एक तरफ जमा हो जाए और ये कहे कि अल्लाह का ये हुक्म सही नहीं है तो ये सब गलत हो सकते हैं, मेरे अल्लाह का हुक्म गलत नहीं हो सकता। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल हदीसों के जरिए मुझे मालूम हो जाए, सीरत के जरिए मालूम हो जाए और उस अमल के खिलाफ भी दुनिया के सारे दानिश्वर एक बात कहे कि ये शरीफ आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता, तो वो एक तरफ, मेरे नबी का अमल दूसरी तरफ। मेरे नबी का अमल ये दलील है इस बात का कि ये शरीफों का अमल है, चाहे हमें समझ में आए ना आए। हमारे नबी ने कोई अमल कर लिया, ये दलील है इस बात की कि ये शरीफ का अमल है, इसलिए कि आप अशरफुल खल्क थे, आपसे बढ़कर कोई नहीं था। अल्लाह ताला शानो हमें तौफीक दे। भाई ये एक घंटा निकल गया मेरा, इतना तवील गुफ्तगू करने का मौका नहीं था, लेकिन भाई ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत ऐसी है, इतना ऊंचा मकाम है आपका कि जुबान जो है वो उसका हक अदा नहीं कर सकती। लफ्ज बेबस जुबान है माजूर, मुझसे जिक्र रसूल किया होगा न किनारा हो जिस समंदर का, वो समंदर उबूर किया होगा। फईन नफदल रसूल अल्लाह लहू लैस लहू हद्दुन, फईन नफदल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैस लहू हद्दुन। आगे क्या है भाई, फयोरिबु अन्हु नातिकुम बिफमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फजीलत है उसकी ऐसी कोई हद नहीं है कि बोलने वाला उस हद से गुजर कर बोल सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है और हर मखलूक की एक हद होती है। तो लफ्ज बेबस जुबान है माजूर, मुझसे जिक्र रसूल क्या होगा न किनारा हो जिस समंदर का, वो समंदर उबूर क्या होगा। इसका माना यही है कि उनके फदाइल महदूद तो हैं लेकिन इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि हमें जो उनकी तारीफ करने की कुदरत दी है उसके लिए वो गैर महदूद है। हमारी तारीफ करने की कुदरत उसके साहिल और किनारे तक पहुंच ही नहीं सकती, हमारे पास वो कुदरत नहीं है कि वहां तक जा सके। अल्लाह ताला शानो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला दर्जे की मोहब्बत अता फरमाए, उसी मोहब्बत पर हमें अल्लाह जिंदा रखे, उसी मोहब्बत पर मौत अता फरमाए और अल्लाह ताला शानहु उसी मोहब्बत पर क़यामत के दिन हमारा हश्र नसीब करे और अल्लाह ताला शानहु उनके उनकी शफात नसीब करे, उनके हाथों से हौज़े कौसर का पानी नसीब करे और अल्लाह ताला शानहु जन्नतुल फिरदौस में उनकी रिफाकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला शानहु हमें उनके दीन का खादिम बनाए और वो जिस शरीयत को लेकर आए थे, जिन तालीमात को लेकर आए थे, उन तालीमात को सीख सीख कर दुनिया के कोने कोने तक लोगों को हम अमन के साथ, सलामती के साथ, इस अमन और सलामती वाले पैगाम को पहुंचाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और पूरे आलम में जहां जहां अफरा तफरी है अल्लाह ताला शानहु वहां की अफरा तफरी को दूर फरमाए और अल्लाह ताला शानहु अपने दीन की हर मुल्क में हिफाजत फरमाए और ममालिक इस्लामिया को अल्लाह ताला शानहु इस्तेहकाम नसीब फरमाए और अल्लाह ताला शानहु ममालिक इस्लामिया के जो सरबराहान हैं उन्हें इस्लाम की, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए और उसके लिए अल्लाह ताला शानहु उनको खैर का जज्बा नसीब फरमाए और हमारे जो अकाबिर जो बुजुर्गान दीन दुनिया से तशरीफ ले गए हैं इस दीन की हिफाजत करके हम तक पहुंचाकर अल्लाह ताला शानहु ये 1400 साल में जितने भी गुजरे हैं उन सब की कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलाकर उनकी रिफाकत मईयत आखिरत में नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم ومكرهم بما شئت وكيف شئت اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على النبي الأمي الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.